आयत भी बड़ी इम्पोर्टेंट आयत है, बड़ी डेप्थ है आयत 164 में। ये आयत दरअसल अल्लाह ताला की पहचान हमें देती है। हमने पढ़ा ना वह इलाहुकुम इलाहु वाहिद, हमने पढ़ा 163 आयत में कि तुम्हारा इलाह सिर्फ एक इलाह है, और वो इलाह कैसा है? वो रहमान है और रहीम है। और उसकी रहमत क्या है? वो क्यों इबादत के लायक? इलाह कौन होता है इबादत के लायक, जिसकी परस्तिश की जाए, जिसकी पूजा की जाए? वो क्यों है परस्तिश के लायक? क्या वजह है? कोई पूछे क्यों अल्लाह की क्यों इबादत करनी? आप लोग कहते हैं ना ला इलाह, कोई इलाह नहीं है अल्लाह के सिवा, तो अल्लाह की क्यों इबादत करें? तो क्या जवाब देंगे आप उसको कि अल्लाह की क्यों इबादत करें? वो कहता है कि नहीं फलां की होनी चाहिए, फलां की होनी चाहिए, पता है आपके पास क्या जवाब होगा? ये है जवाब जो अगली आयत में आ रहा है। ये है अल्लाह ताला की पहचान। अल्लाह ताला को अगर पहचानना है ना, तो उसकी पहचान के लिए अल्लाह ने आयात उतारी है कुरान में, ठीक है? ये आयात जो कुरान में है ना, इससे आप अल्लाह को पहचानते हैं। लेकिन इसके अलावा अल्लाह ताला को अगर कोई कहता है कि मुझे किसी ने नहीं पहुंचाया, मुझे किसी ने कोई पैगाम दिया ही नहीं, मेरे पास तो कोई आया ही नहीं, मैं जंगल में रहता था, वहां पे कोई नहीं था इंसान, या किसी को नहीं पता था, ऐसे भी आइलैंड्स हैं आज भी, सुभान अल्लाह, आई वाज अमेज्ड कि जब मुझे एक आइलैंड का पता चला, इंडिया से नीचे साउथ में वो है, और वहां पे कोई नहीं गया, कोई नहीं आज तक गया, वो लोग अपने ही रहते हैं वहां पे, उनके पास कोई दुनिया का इंसान नहीं पहुंचा हुआ, उनका अपना कबीला या जो भी, या जिस भी दीन, अल्लाह बेहतर जानता है वो क्या करते हैं, क्या उनके तरीके हैं, उनको नहीं कभी किसी ने छेड़ा। कोई मिशनरीज गए थे, देखें ये क्रिश्चियन मिशनरीज कितना काम करते हैं, ये इन्होंने वहां पहुंचने की कोशिश की, उन्होंने मार ही दिया उनको, ये न्यूज आई थी ना। तो यानी अगर कोई कहता है, और ऐसा पॉसिबल है, ये ना कहें कि नहीं आज की दुनिया में तो ऐसा पॉसिबल नहीं, ऐसा है कि कोई कहता है कि मुझ तक कोई पैगाम नहीं पहुंचा, क्या उससे शिर्क फिर एक्सेप्टेबल होगा? नहीं। क्यों? इसलिए कि ये कायनात अल्लाह ताला ने अपनी पहचान का जरिया बनाया है। इस कायनात में भी कोई गौर व फिक्र करेगा तो अल्लाह को पहचान लेगा, कम अज कम वो ये जरूर जान लेगा कि कोई खालिक है और वो कोई एक ही है, बस दैट्स इट। तो उससे इतनी ही फिर पूछ है, बस एक कोई है हस्ती, वो ये इसमें जमीन पे नहीं है, वो कोई इन बुतों में, इंसानों में से कोई नहीं, कोई और हस्ती है। इसलिए अल्लाह ताला ने देखें यहाँ पे हमें उन चीजों की तरफ तवज्जो करने का की दावत दी है, गौर व फिक्र करने की दावत दी है इस कायनात के ऊपर। आप इस इल्म को कुछ कह लें, बायोलॉजी कह लें, एस्ट्रोनॉमी कह लें, कोई जूलॉजी कह लें, या बॉटनी कह लें, या साइंसेस का और कोई उलूम कह लें, जो भी कह लें, मगर उनको वो उलूम भी अल्लाह की पहचान कराते हैं। मगर किन लोगों को ये पता चलेगा आगे जाके एंड में शायद, कि किन लोगों को ये उलूम है ना हमारे पास, इन उलूम को पढ़ना किस लिए? अल्लाह की पहचान हो इनसे, इनसे भी माइंड खुलता है। अगर इस नीयत से पढ़ेंगे, ये भी एक इबादत है, ये भी अल्लाह की आयत के ऊपर अमल है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ही फरमाया कि इन पे गौर व फिक्र करो, इनमें साइंस हैं, इनमें निशानियां हैं। तो पहली चीज देखते हैं कि अल्लाह ताला ने किस चीज की पहचान हमें, पहली क्या चीज बताई है हमें कि जिससे अल्लाह को पहचानो। देखिए आप इस आयत को एक ब्रेथ में पढ़ के भी खत्म कर सकते हैं, और ये आयत इतनी डीप है कि आप यानी अरसा दराज तक इसके ऊपर ही तदब्बर कर सकते हैं, इस एक आयत के ऊपर, इसमें इतनी डेप्थ है। पहली चीज क्या है? इन्ना फी खल्क समावाती वल अर्द, बेशक तखलीक में आसमानों की और जमीन की, इसमें क्या है? निशानी है। किसकी निशानी है? क्या निशानी है? खालिक की पहचान है, बनाने वाले की निशानी है। निशानी क्या चीज होती है? देखिए मैं आपको कोई चीज देती हूँ, आप उसको अपने पास रखती हैं, जाने लगी हैं आप, मैं आपको कहती हूँ ये ले लो, ये ले लो, मेरी निशानी है अपने पास, तो वो मतलब क्या होगा? यानी अब आप जाएंगी तो जब आप मुझसे दूर होंगी तो आप उस चीज को देखेंगी, आपको मैं याद आ जाऊंगी, राइट। हम अल्लाह ताला को देख नहीं सकते लेकिन उसकी निशानियां हैं, वो कहता है ये मेरी निशानियां हैं, यानी अब इनको देखोगे ना तुम्हें अल्लाह याद आ जाए, ये इसलिए है। इनके अंदर अल्लाह ताला ने जो भी फवायद रखे हैं वो रखे, वो सारे अपनी जगह, मगर इनसे हमें पहली चीज क्या लेनी चाहिए कि अल्लाह हमें याद आ जाए, अल्लाह की पहचान हो। कैसे जमीन आसमान में अल्लाह की पहचान होगी? देखें आसमान, आसमान सिर्फ ये आसमान नहीं, हम कहे ये नीला आसमान, इसमें क्या पहचान? आसमान मीन समा कहते हैं वो बुलंदी को, आसमानों में फिर वो सारी चीजें आ जाती हैं जो जमीन से बुलंद है, जिसमें चांद भी है, सितारे भी हैं, सैयारे भी हैं और गैलेक्सीज हैं और पता नहीं क्या क्या चीजें हैं जिन तक इंसान अभी तक पहुंच ही नहीं सका। आप लोगों के लिए मैंने इसके ऊपर रिसर्च की कि वैसे भी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है ये, कि क्या है कायनात में, कैसे ये सब निजाम है। तो सुभान अल्लाह, थोड़ी सी बातें सिर्फ आपसे शेयर करूंगी कि आज साइंस कहती है कि 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं। एक तो हमारी ये गैलेक्सी है मिल्की वे है इसका नाम, इसमें हमारा सोलर सिस्टम है, निजामे शमसी, और इसमें और बहुत सारे सितारे सैयारे हैं। कितने सितारे हैं इसमें जो हमारा सिर्फ गैलेक्सी जो हमारी है इसमें, पता है कितने सितारे? 100 बिलियन, मिलियन नहीं बिलियन सितारे हैं इसमें जो सिर्फ हमारी गैलेक्सी है। वो कहते हैं और 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज इसके अलावा, सुभान अल्लाह, उसमें कौन से सितारे सैयारे होंगे। और एक सितारा जिसकी मैं आपको एग्जांपल देना चाहती हूँ, जो हमें लगता है कि बहुत बड़ा है, वो सूरज है, या हम जिसके ऊपर बैठे हैं ये सितारा थोड़ी है, ये तो सैयारा है ना, तो प्लैनेट है, उस सन जो है वो एक स्टार है। ओके, आप सोचिए ये तो हमसे करीब है तो इतना बड़ा नजर आता है, इससे बहुत बड़े बड़े और सितारे मौजूद हैं इस कायनात में, लेकिन वो हमें बहुत छोटे छोटे सितारों की सूरत में नजर आते क्योंकि वो दूर बहुत है। अब उन्होंने कहा कि जो ये यूनिवर्स है ये 93 बिलियन लाइट ईयर्स इसका फासला है, डायमीटर है 93 बिलियन लाइट ईयर्स। लाइट ईयर्स जानते हैं कितने होते हैं? अगर लाइट की स्पीड से कोई चीज ट्रेवल करे तो एक साल में पहुंचती है, वो लाइट ईयर होता है, उस स्पीड से कोई जाए तो 93 बिलियन ईयर्स लगेंगे उसको। हालांकि लाइट जो है वो फास्टेस्ट है, जो जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा तेज है ना इंसान को, जो चीज अभी तक मिली वो लाइट है, उससे ज्यादा कोई चीज, आवाज भी देर से ट्रेवल करती है, लाइट उससे ज्यादा तेज ट्रेवल करती है। इतनी तेजी से भी अगर कोई ट्रेवल करे, अब सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की ये कायनात पे इंसान गौर करने लगे ना, बिलीव मी ये आपको बताती है कि अल्लाह तो कितना बड़ा होगा। तेरी सिर्फ ये इतनी ये छोटी सी चीज है कायनात, तेरी एक मखलूक है, वो देखो कितने बड़े साइज की है कि 93 बिलियन ईयर्स लगे लाइट ईयर्स, छोटे वाले ईयर्स नहीं हमारे वाले, लाइट इतना ट्रेवल करे और तब वो 93 बिलियन ईयर्स में पहुंचेगी। इसीलिए तो कई सितारे हैं वो खत्म भी हो जाते हैं, उनकी लाइट अब हम तक पहुंचती है, इतनी दूर है वो। आप देखें अल्लाह ताला की कायनात में बिलियन ट्रिलियन तो कोई चीज ही नहीं है। वो कहते हैं अगर इंसान सितारों को गिनना शुरू करे ना, गिनना शुरू करे, हर सांस पे एक सितारा गिने, तो आप मर जाएंगे, लेकिन आप सितारे नहीं गिन सकते। सुभान अल्लाह, आसमान इतना वसी और जमीन, जमीन को आप गौर व फिक्र करो तो जमीन के अंदर इतनी निशानियां अल्लाह ताला की, कैसे इसके अंदर अल्लाह ताला ने समुद्रों के निजाम चलाए, कैसे इसके अंदर ये मट्टी है, हम इसके ऊपर चलते हैं फिरते हैं, इसके ऊपर पौधे उगते हैं, अंदर आग है इसकी, इसके अंदर आग है, आग का गोला है इसके अंदर, कोर जो जमीन का है वो क्या है? फायर है। कभी सोचा आपने कैसे ये घूम रही है, कैसे ये तेजी से गर्दिश कर रही है, उड़ रही है, ये उड़ने का वर्ड इसके लिए सही है, चलने नहीं उड़ रही है, इतनी तेज ये चल रही है, हमें कोई महसूस हो रहा है? घूम भी रही है, गोल गोल भी घूम रही है और भाग भी रही है, उड़ती जा रही है हवा में, कोई महसूस होता, कितनी बड़ी निशानी है अल्लाह की। सुभान अल्लाह। वख्तिलाफ लैली व नहार, और इख्तलाफ में रात के और दिन के, कभी दिन आ रहा है कभी रात आ रही, दिन आ रहा है रात आ रही, क्या ये बताता नहीं कि कोई खुदा एक ही है पीछे इसके? अगर एक से ज्यादा होते तो उसकी भी तो कोई मर्जी चलनी थी। वो कहता कि कभी तो वो कहता कि नहीं आज दिन नहीं, आज दिन के बाद रात के बाद दिन ही नहीं आना, रात के बाद एक और रात आए या दिन के बाद एक और दिन आना चाहिए। एक ही निजाम है जो करोड़ों साल हो गए चलता जा रहा है, वैसे कोई एक ही होगा ना पीछे। और फिर देखिए इख्तलाफ कैसा है, ये इख्तलाफ ये है कभी दिन लंबा और रात छोटी, कभी रात छोटी दिन लंबा, इस तरह से करके ये इख्तलाफ चल रहा है ना। जैसे गर्मियों के अंदर आप देखें दिन कितने लंबे हो जाते हैं, रातें छोटी, सर्दियों में दिन छोटे रातें लंबी, ये भी इख्तलाफ है। और रात स्याह काली, दिन सफेद बिल्कुल रोशन, इख्तलाफ है ना दोनों में, फिर भी कैसे आ और जा रहे हैं। कोई बटन नहीं है यहाँ पे, इंसानों को कर दिया जाता कि आप चलाओ ये दिन और रात, और आप चलाओ जमीन को, ये सारे मिलके नहीं चला सकते थे। लेकिन अगर किसी ऐसे इंसान को बुलाया जाए जिसने ये कभी देखा ना हो और उसको ये दिखाया जाए तो वो हैरान हो जाएगा कि इतना बड़ा एक चादर सी आती है जैसे, और आहिस्ता आहिस्ता रात हो गई और फिर दिन भी आहिस्ता आहिस्ता चढ़ा, ऐसे नहीं एकदम ही स्विच ऑफ हो गया जैसे हमारे कमरों का होता है, लाइट बंद की अंधेरा घुप, लाइट चलाई बिल्कुल रोशन हो गया, फिर जब लाइट जलती हमारी आंखें भी नहीं खुलती क्योंकि अंधेरे से एकदम से लाइट आ जाए तो आंखें नहीं खुलती। लेकिन रात और दिन को कैसे अल्लाह पाक ने सुभान अल्लाह एक दूसरे में इतना स्लाइटली वो चेंज आ रहे थे पता भी नहीं चलता। आप देखो कि अगर आप किसी खिलाड़ी को देखते हैं जिसने बड़ी महारत हासिल की है अपनी, उसमें बॉल जमीन पे मारता मारता ले जाता है और फिर वो अपने हुप में से एकदम ऐसे उछालता है और उसमें से गुजर जाता है, या एक खिलाड़ी है वो भागता है भागता है और वो गोल कर देता है, तो देखा है लोगों कैसे खड़े हो जाते हैं, खड़े होकर तालियां बजाते हैं, चीखें मारने लगते हैं। या हम देखते हैं किसी को कि कोई बहुत ही ऐसा कोई कारनामा किसी ने किया, हम इतने मेस्मराइज हो जाते हैं, वाह क्या इसने ब्रिज बनाया, क्या इसने बिल्डिंग बनाई, जबरदस्त क्या भाई बात है। या कोई और किसी का देखते हैं कोई कारनामा तो हमारी आंखें फटी ही फटी रह जाती। अच्छा इन सारों को देख के हम इतने मुतासिर होते हैं, खुशी से हम उछलने शुरू कर देते हैं, चीजें मारने लगते हैं। तो वो तो उसने छोटी सी एक स्किल हासिल की, उसने उससे अल्लाह की दी हुई एक नॉलेज से उसने कोई छोटा सा काम कर दिया और हम खुशी से कितने पागल होते। तो जिसने इस सारी कायनात को बना के हमारे सामने रख दिया, इतने इतने बड़े कारनामे हो रहे हैं यहाँ पे, इतनी जबरदस्त चीजें हो रही है, इंसान ये सोचता नहीं है वाह सुभान अल्लाह ये कैसे हो गया? होना तो ये चाहिए कि इंसान हैरान हो जाए, मगर ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि हम रोज जो देखते हैं, रोज दिन आता है और चला जाता है, रोज रात होती है सुबह होती है, और रोज ये जमीन चल रही है, आसमान से सितारे हमें नजर आ रहे हैं, ये सब रोज हो रहा है, तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। वरना अगर हमने ना ये देखा हो तो ये बहुत हैरत अंगेज बात है। इसीलिए अल्लाह ताला ने बार बार कुरान पाक में फरमाया, एक दफा नहीं बार बार, आसमान और जमीन पे गौर व फिक्र करो। तो ये दुनियावी नॉलेज नहीं है, ये भी ऐन दीन का नॉलेज है जब आप इस नियत के साथ इनमें गौर व फिक्र करते हो और ये पढ़ाई आप करते हो, ये स्टडी करते हो और उससे अपने अल्लाह को पहचानते हो। फिर वल फुल्क, और कश्तियों में अल्लती तजरी फिल बहर बिमा यनफउन नास, देखो कश्तियों को ही देखो। अभी मैं न्यूज में मैंने ये देखा, ये क्रूज शिप है जिसको उन्होंने खड़ा किया हुआ, कि उन्होंने कहा कि इसके अंदर एक कोई उनको शक है कि एक पेशेंट को कोई कोरोना वायरस लग गया, तो उसके शक में उन्होंने सारे जहाज को खड़ा किया हुआ। तो आपको पता है जहाज में कितने लोग हैं? 7,000 लोग। मैं हैरान हो गई कि इस क्रूज शिप में 7,000 लोग हैं जो वहां पे बंद पड़े हुए हैं, समंदर में खड़े हुए हैं, कि मुझे आज तक नहीं पता था कि इतने हजारों लोगों का को भी लेके चलते हैं, और वो क्रूज शिप ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है और वो समंदर में खड़ी भी है। इसके अलावा आप देखें ये तो, और आज तो जहाज हैं, पहले तो यही शिप्स ही होते थे जिनसे लोग एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, और आज भी समुद्रों में चलने वाले ये जहाज कितना बड़ा फायदा देते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया इसलिए है ये ताकि नफा दे लोगों को, इसलिए अल्लाह ने ये बनाए। ये जहाजों के जरिए इंसान कितने फायदे उठाता है, अगर आज आप अपने घर में देखें कोई भी चीजें उठा के देखें, उसके ऊपर जरूर पढ़िएगा मेड इन कहाँ का, आप देखेंगे कोई ही चीज शायद आपको ऐसी मिले जो जिस कंट्री में आप रहते हैं वहां की है। शायद ही कोई चीज मिले, इक्का दुक्का जितनी चीजें आपको नजर आएंगी उन पे मेड इन फलां कंट्री, मेड इन फलां कंट्री, आप देखेंगे कहां कहां से चीजें आएंगी ना, कहां कहां से चीजें आपके घर में मौजूद है, वो कैसे आई। स्टोरों में आप जाके देखें, आप कपड़े उठा लें, आप कोई खाने पीने की चीजों में से कोई उठा लें, आप देखेंगे उसके ऊपर पढ़ के देखिएगा मेड इन कहां से। जूते देख लें, आप कोई डेकोरेशन पीस देख लें, वो कहीं दूर दूर के मुल्कों से आया होगा, किस तरह आता है किसी जहाज में। फिर सोचिएगा कि अल्लाह तू ये जहाज ना बनाता तो ये दूसरे आपके हवाई जहाज तो नहीं इतना सामान उठा के ला सकते, ये तो नहीं ऐसा काम कर सकते, ये बहरी जहाजों का ही काम है। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बार बार ये इस चीज को याद दिलाया कि इन कश्तियों को देखो, और पता नहीं पुराने जमाने में तो लोगों के इतने इतनी गुड्स नहीं आती होंगी कश्तियों में जितनी आज आती हैं। आप देख लें पहले जमानों के अंदर वो अपने शहर की चीजें या करीब करीब की बस्तियों की चीजें आ जाती थी, ऐसे नहीं होता था कि दूसरे मुल्कों की आ रही, आज तो स्पाइसेस से लेकर आप छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज तक आप देख लें सब बाहर से आती हैं, दूसरे मुल्कों से और बहरी जहाजों के जरिए। तो देखो बीमा यन फाउंड नास, तुमने इस पे कभी गौर नहीं किया कि ये जहाजों को चलाने वाला कौन है, पानी में डूब जाए तो क्या हो। और आप देखिए सारी ट्रेडिंग जो होती है वो इन जहाजों से होती है, बहरी जहाजों से। इसी वजह से मुल्कों के लिए पोर्ट्स कितने इंपॉर्टेंट है कि कहीं मुल्क उन्होंने जंगें इसलिए की, मुल्कों का नाम नहीं लूंगी आप सबको पता होगा, जंग इसलिए की कि हमें सी पोर्ट नहीं लगती, हमें सी पोर्ट चाहिए, इसलिए वो दूसरे मुल्कों को इन्वेड करना चाहते थे कि वहां से हमें पोर्ट मिले। अगर पोर्ट समझते हैं बंदरगाह जो होती है वो मिले ताकि वहां से फिर हमारी ट्रेडिंग हो, क्योंकि जिन मुल्कों में ये पोर्ट्स होती है वहां पे ट्रेडिंग हो सकती है। ऑयल कैसे जाता है एक जगह से दूसरी जगह बताएं, हर मुल्क में तो ऑयल नहीं पैदा हो रहा, ऑयल कैसे आता है, इन बहरी जहाजों से आता है जिनसे आपकी गाड़ियां चलती हैं, फिर आगे और कितने काम होते हैं आप बताएं। ऑयल ही बंद हो जाए तो आपकी तो सारी ट्रांसपोर्टेशन ही बंद हो, जहाज भी चलने बंद हो जाएंगे, ये ऑयल लेकर आते हैं इतने बड़े बड़े जहाज होते हैं। तो सुभान अल्लाह, आप गौर तो करें इसमें, चीजें हम इस्तेमाल करते हैं घरों में, गाड़ियों में बैठते हैं, गाड़ियां कहां से आ रही हैं, गाड़ियां भी शिप्स में आती हैं दूसरे मुल्कों से, आपके पास जो गाड़ी है आपने सोचा कभी कहां से आई, तो नहीं ये तो दुनियावी चीज है, दुनियावी नहीं है, आप इसके पीछे तो जाएं। आपको यही तो है मोमिन की पहचान क्या होती है, वो जाहिर में गुम नहीं होता, तो उसके पीछे जाके उस हस्ती को पहचानता है जिसने ये सारा कारनामा किया। सुभान अल्लाह, तो आप एक पहिए से ले लें, आप एक गाड़ी ले लें, एक जहाज ले लें, आप देखेंगे आपकी अकल दंग रह जाएगी, अल्लाह तू ये जहाज अगर ना चलने देता समुद्रों में तो हमारी तो जिंदगियां ही चल नहीं सकती थी आज, ये जो तकियां आज हमने की हुई हैं, जो सारा हमें सामान कितने आराम से मिल जाते हैं, या अल्लाह ये क्या क्या चीज कहाँ कहाँ से आ रही है। बीमा यनफा उन्नास, ये नहीं कहा कि जानवरों को इससे फायदा होगा, जहाज इसलिए नहीं चले हैं इंसानों के फायदे के लिए। सुभान अल्लाह, क्या इंसानियत फिर इस एहसान को मानती है या नहीं, इंसानियत इसको पहचानती है कि नहीं। लोग रोज जा रहे हैं जहाजों पे ट्रेवल कर रहे हैं, आपने भी कभी जहाज देखे होंगे, या लोग देखते हैं आसमान की तरफ जमीन की तरफ दिन और रात को, कौन नहीं देख रहा। इनके लिए तो कोई बहुत बड़ी डिग्रियों की जरूरत नहीं है, इनके लिए तो पैसे भी स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, लोग देखते हैं, मगर क्या बात है कि गफलत कितनी है कि देख के भी रब को नहीं पहचानते, बनाने वाले को नहीं जानते, कभी नहीं सोचते कि किसने ये ऐसा खूबसूरत आसमान सजा दिया, किसने इस जमीन को फैला दिया। रात और दिन किसी के करने से तो आ जा रहे होंगे, मैं कुछ ना करूं सारा दिन तो मेरे घर का तो काम चलता नहीं है, खाना मेरा खुद नहीं पक जाता, सफाइयां खुद नहीं हो जाती, बर्तन खुद से नहीं धुल जाते, कुछ भी नहीं खुद से होता अगर मैं ना करूं। तो जाहिर है अगर छोटे से घर का निजाम नहीं चल सकता किसी के कुछ किए बगैर, तो कायनात या बगैर किसी के करने से चल रही है, इतनी बड़ी और इतनी हार्मनी से दिन और रात, क्या इतनी अकल है सूरज को कि मैंने गरूब होना है और मैंने तुलू होना है, और सर्दियों में मैंने जरा ठहर के तुलू होना है, गर्मियों में मैंने जल्दी आ जाए करना है। अच्छा हम अपने वो घड़ियां रखते हैं ताकि हम देखें कि भाई सूरज आज कितने बजे फजर है, आज कितने बजे मगरिब है, रोज हमें चेक करना पड़ता है। और सूरज को क्या, उसके पास कौन सा क्लॉक है, उसको कौन चला रहा है, उसका कौन ड्राइवर है, उसको कौन से अलार्म से पता चलता है कि मैंने उठना है और चलना है। कुछ सोचो, यही तो सोच है जो अल्लाह उभारता है कि सोचो इंसान। तुम्हें लेकिन जानवर में और इंसान में क्या फर्क है, जानवरों तो सूरज दिन है रात है या जमीन चल रही है नहीं चल रही, आसमान है, क्या उसको नहीं कुछ पता, उसने बस खाना है पीना है सो जाना है बस। इंसान अगर तुम भी यही करोगे तुम्हें और जानवर में क्या फर्क रह गया, अकल अल्लाह ने इसलिए ही तो दी है। सोचो इसको कि सलाम ने सूरज को बताया कि आज देखें अब हमारा दिन, फॉर एग्जाम्पल है कि अब आपके सर्दियों से आप गर्मियों की तरफ जा रहे हैं, तो अब आपका जो सूरज का टाइम है वो एक एक मिनट पीछे होता जा रहा है, फजर एक एक मिनट पहले होती जा रही। कौन है जो सूरज को जाकर बताता है एक मिनट पहले आज हो गया, आज एक मिनट अर्ली और हो गया, ये है वो जो एक मिनट है, उसके पास कौन सा क्लॉक है, अगर वो होते वक्त उसको कौन बता रहा है। अच्छा फासला तो उसने उतना ही तय करना है, सर्दियों में क्या वो अपनी स्पीड तेज कर देता है और गर्मियों में क्या स्लो चलना शुरू हो जाता है, क्या होता है। कुछ तो हम इंसान सोचे इस बात को, इस पे गौर व फिक्र करे, साइंटिफिकली इसको अंदर देखना तो वो और तरीके से देखना, उस तरह से गौर व फिक्र करे, तो आपको पता चलेगा जितना इसको पढ़ेंगे ना आपको पता चलेगा कितना प्रिसाइज है ये निजाम, यानी टू द पॉइंट के डेसिमल्स तक प्रिसाइज है। एक डेसिमल के अंदर पॉइंट के आगे 0000 आगे लगा दें तो उसके बाद भी आप कहेंगे ना, तो वो भी डिजिट जो है वो इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि उससे निजाम चेंज हो जाएगा। इतनी सी भी कहीं चेंज आती है ना सारा निजाम उलट पुलट हो जाएगा। जरा सा फॉर एग्जाम्पल, जरा सा सूरज को करीब कर दें जमीन के तो सब कुछ खराब हो जाएगा, इतनी गर्मी शदीद हो जाएगी जमीन नहीं चल सकती, जमीन उसमें जाके गिर जाएगी। ये जो डिस्टेंसेस अल्लाह ताला ने रखे हैं ना सुभान अल्लाह, ये डिस्टेंस भी इतना बड़ा फैक्टर है कि जिससे इंसान अल्लाह ताला को पहचान सकता है कि अल्लाह इतना एग्जैक्ट इतना प्रिसाइज डिस्टेंस, ये अल्लाह अगर थोड़ा करीब हो जाता तो तब ये जमीन उसमें गिर जाती, अगर थोड़ा दूर हो जाता तो जमीन उड़ के कहीं और चली जाती। साइंस के लिहाज से देखना तब भी समझ आती है, जिस वक्त ये साइंस ने नहीं अभी तक बातें जानी थी उस वक्त और लिहाज से देखना तब भी समझ आती थी। तो लेकिन सोचने के लिए वो ध्यान चाहिए कि इस एंगल से भी सोचो। फिर वह मा अनजल अल्लाह मिन समाई मिन माइन, फिर देखो जो उतारा अल्लाह ने आसमान से बारिश को, अब वो बारिश जो है उसके लिए कितना कुछ काम करता है, तो बारिश होती है वो भी। मैं कहती हूँ जितना आज आप साइंस के जरिए अल्लाह ताला को पहचान सकते हैं शायद पहले उतना नहीं था, जितना आज आपको आपकी अकलें हैरान हो जाती हैं कि अल्लाह ये क्या इतना कुछ चल रहा है, समंदर भी काम में लगे हुए हैं उसके लिए बारिश बरसाने के लिए, हवाएं काम में लगी हुई हैं, बादल काम में लगे हुए हैं, क्या क्या अल्लाह ताला, सूरज काम में लगा हुआ है, तो क्या क्या अल्लाह ताला के निजाम है जो चल रहे हैं, तो तब बारिश होती है, कहीं से और से नहीं आ रही बारिश। फअहया बिहि अल-अर्ध बादा मौतिहा, फिर देखते नहीं है जमीन को अल्लाह कैसे जिंदा करता है उसकी मौत के बाद, डेड होती है बिल्कुल जमीन, कैसे हरी भरी हो जाती है। अल्लाह दिखाता है कि तुम ये ना सोचना कि मार के फिर उसके बाद जिंदा नहीं वो कर सकता, जैसे उसने जमीन को जिंदा कर दिया बारिश के जरिए, इसी तरह तुम्हें भी एक दिन जिंदा कर देगा। एक बारिश और भी है जो अल्लाह के हाँ बरसेगी वहां पे, इसे इंसान के जिस्म उगेंगे वो जिंदा हो जाएगा। तो अल्लाह ताला के इस निजाम से ही सोच लो कि उसके लिए मुर्दा को जिंदा करना कोई मुश्किल नहीं है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता जमीन को देख लो, क्या क्या पहचान रहे हैं आप इसमें बताएं। जब आप ये देखते हैं तो क्या क्या चीज की पहचान आती है, अल्लाह ताला कितना कुदरत वाला है। देखो कुदरत है ना, ये इतने बड़े निजाम को चलाना, आसमान है जमीन है, जमीन तो छोटी चीज है, जो आसमान है वो तो कायनात है, उसको चला रहा है, पता नहीं वहां पे क्या क्या मखलूकात होंगी, अल्लाह बेहतर जानता है। और क्या क्या चीजें, हम तो अपनी दुनिया और अपने आप को ही कुछ समझे बैठे हैं, वो क्या चीजें हैं, क्या दुनियाएं हैं और कितनी दुनियाएं हैं हमें नहीं पता। अल्लाह तेरी कुदरत कितनी बड़ी है, अल्लाह तू कितना बड़ा होगा जो तूने इतनी वसी कायनात बना दी, अल्लाह तेरे पास इल्म कितना होगा कि तूने इतने खूबसूरत निजाम को बनाया। वरना देखिए, अगर अल्लाह के निजाम के अंदर इतनी परफेक्शन ना होती तो आप ऊपर आसमान की तरफ देखते, हाय कभी किसी दिन कोई चीज किसी से टकरा रही है, किसी दिन कुछ हो रहा है, कहीं कोई धमाका हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं आग लगी हुई है कहीं, तो इसे तो ये नजर आता, कंप्लीट हार्मनी है ऊपर, सुकून है ऊपर, आपकी जमीन पे ये इंसान ने फसाद मचाए हुए है, ऊपर आप देखें कोई फसाद है, कोई जंगे हो रही है, इतनी बड़ी बड़ी चीजें हैं ये तो नहीं लड़ रही आपस में, क्योंकि एक चलाने वाला कोई है जिसने ना सिर्फ इनको पैदा नहीं सिर्फ करके छोड़ दिया, कॉन्स्टेंटली इनकी निगरानी भी तो कोई कर रहा है। तो कितना अच्छा निगरान है अल्लाह कि करोड़ों सालों से ये चल रही है। हाँ हम तो जब से देख रहे हैं ऐसा ही देख रहे हैं, आपसे पहले भी ऐसा ही था, तो अल्लाह खुद कितना प्यारा निगरान है। और फिर हर चीज के ऊपर जिसकी नजर हो, जाहिर है अगर कोई ऐसा खुदा है जिसकी आज नजर इस पे है तो वो इधर से गाफिल हो जाता, तो पीछे तो कुछ और ही हो जाएगा। हम घर से 4 मिनट के लिए निकलते हैं तो पीछे बच्चे उधम मचा देते हैं, घर खराब कर देते हैं, गंदा कर देते हैं, कहते हैं हम 4 मिनट घर 10 मिनट के लिए मैं निकलती हूँ और तुमने घर का क्या हाल किया, ऐसा होता है ना। तो अगर वो खुदा होता जिसकी आज नजर जमीन पे है तो बाकी सियारों सितारों का तो बुरा हाल हो जाता, वो सितारों से सियारों की तरफ देखता उनको संभालता तो जमीन पे कुछ और हो जाता। इसका मतलब वो कि ऐसा खुदा है, यानी अगर आप इस सारी चीज को भूल जाए ना, सिर्फ इन चीजों के ऊपर तवज्जो करके इनसे अल्लाह को तलाश करें तो आप कर सकते हैं कि वो कोई ऐसा खुदा है जिसकी निगरानी में हर चीज है। और इसका मतलब है कि उसको कोई नींद भी नहीं आती होगी, क्योंकि अगर नींद आती होती तो ये तो सारे खत्म ही हो जाते, किधर बारिश बरसनी है, बादल किधर जाने हैं, क्या होना है, वो तो खुदा सोया पड़ा होता तो क्या हो जाता। तो इसका मतलब वो सोता नहीं है, वो गाफिल नहीं है, और इसका मतलब वो एट अ टाइम हर चीज को देख सकता है, उनको कंट्रोल भी किए हुए। अच्छा अगर कोई ऐसा खुदा होता कि मसलन वो तो कहता है कुछ तो हो कुछ और रहा है, कोई उसकी सुन रहा है कोई नहीं सुन रहा, तो फिर क्या होता। इसका मतलब वो कोई ऐसा खुदा है जिसका पूरा कंट्रोल है हर चीज के ऊपर, ये कोई चीज टस से मस नहीं हो सकती। कोई सूरज आज नाराज होके नहीं बैठ सकता, मुझे आज बड़ी नाराजगी मैंने नहीं आज निकलना, कल ऐसा क्यों हुआ था और फिर वैसा क्यों हुआ था, बस मुझे ये बात बुरी लग गई, वो भी हमारी तरह रूठने बैठ जाता। हम नाराज हो के कितने दिन बैठ जाते हैं घर वालों से, तो वो ऐसे बैठता तो हो जाता काम फिर हमारा, तो जमीन चलना बंद कर देती एक दिन, आज तो मैं बड़ी गर्म हो गई हूँ, सूरज मेरे से बहुत ज्यादा मेरे ऊपर अपनी धूप फेंक रहा है, मैं तो आज नहीं चल रही, क्या होता फिर। वो कहती मैं तो घूम घूम के थक गई हूँ अब। तो इसका मतलब कोई है ना जिसके कंट्रोल में, जिसके हुक्म ऐसा है कि किसी की मिजाल नहीं चूचरां करने की, पहचाने इनसे।
और फिर वो कोई ऐसा इल्म वाला ही होगा जिसको इतना पता होगा कि इतना डिस्टेंस होना चाहिए, इतनी लाइट यहां से यहां इस वक्त पहुंचेगी, ये इस वक्त चलेगा, इस वक्त ये गरूब होगा, इस वक्त दिन चढ़ेगा, इस वक्त रात होगी, गर्मियां ऐसे आनी चाहिए, सर्दियां ऐसे आनी चाहिए, इसमें ये मौसम के फल होंगे, इसमें ये मौसम, वो कोई इतना ही इल्म वाला होगा तो फिर ही उसने ये सारा किया ना। जब एक एक शय है इतनी सही चल रही है तो वो कोई बनाने वाला बहुत ही उसका इल्म होगा ना। समझ आ रही है ना ये बात? फिर देखिए हर चीज को हम देखते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ पीछे उसके कोई हिकमत होती है, कोई पर्पस होता है। पर्पसलेस कोई चीज नहीं, बेमकसद कोई है नहीं, इसका मतलब बड़ी वो हिकमतों वाला होगा। उसको पता होगा कि मैंने ये चीज इस तरह बनानी है तो ये मकसद पूरा करेगी। अगर शेर को बनाया तो उसके वैसे दांत दिए जैसे उसने खाना है, अगर हाथी को बनाया तो उसके दांत डिफरेंट है, उसने तो पौधे और वो घास फूस खानी है, उसने वैसी चीज। देखो कैसे हर चीज को छोटी डिटेल में भी दाके देखें तो वो एक बामकसद चीज है। अगर हमारी नाक है ना तो इसके अंदर छोटे छोटे बाल भी हैं तो उनका भी एक मकसद है। सुभान अल्लाह, अल्लाह हू अकबर। अब इसकी डेप्थ में जाके देखें तो आपको पता चले, सुभान अल्लाह, ये आंखें बनाई है ना आंखों के, सुभान अल्लाह, अल्लाह हू अकबर। ये जो आप आंखें ब्लिंक करते हैं तो ये जो ब्लिंक आप कर रहे हैं अल्लाह, इस आयत के ऊपर ही हम चलते रहे ना तो ये 3 घंटे तो दूर की बात है, पूरा दिन लग जाएगा। कि ये जो आंख आप सुभान अल्लाह अल्लाह हू अकबर आप ब्लिंक करते हैं तो ये इसको आम जुबान में क्या मैं कहूँ कि लुब्रिकेंट जैसे, कोई ऑयल्स, कोई ऐसी चीज ये ऐसे लेकर आते हैं, ये आपके जो पपोटे हैं, ये जो आईलिड्स हैं, ये ऐसे लेकर आते हैं जिससे आंख ड्राई ना हो, वरना हवा है ना ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, सूख जाएगी। आप देखते हैं इसमें हल्की हल्की नमी रहती है। अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान पाक में, अल्लाह अकबर, सिर्फ आसमानों जमीन का ही नहीं, अल्लाह ताला ने फरमाया सनूरीहिम आयातीना, हम अनकरीब इनको दिखाएंगे अपनी निशानियां, फिल आफाक, आफाक में इस कायनात में, वफी अनफुसिहिम, और इनके अपने नफ्सों में, हत्ता यतबयन लहुम अन्नहुल हक, इनका अपना आप पुकार उठेगा, ये चीख उठेंगे अल्लाह ये तो हक है। अल्लाह ताला कहता है हम ऐसे दिखाएंगे। और वाकई आप अपनी जिस्मों में गौर करें या कायनात में गौर करते हैं, चलो कायनात में नहीं गौर होता, अपने जिस्मों को ही देख लो, अपने आप को ही देख लो कि हम क्या चीज है। 37.2 ट्रिलियन सेल्स है एक एवरेज बॉडी में, अब कोई इससे बड़ा होगा तो या इससे छोटा होगा इसके काम होगा, एवरेज एक बंदे की बॉडी में 37.2 ट्रिलियन सेल्स है। सुभान अल्लाह, देखे एक इंसान सांस लेता है दिन में 30,000 दफा सांस लेता है, कोई चाली सांस चल रही है, कोई कोई है ही जो, हम तो नहीं जोर जोर लगा लगा के तो सांस लेते, अगर हमारे करने से चलती होती तो जो कोई मर जाता क्यों नहीं ले लेता सांस, उसकी सांस क्यों बंद हो जाती। ये जो मैंने आपको बताया कि आंख हमारी ब्लिंक करती है 30,000 दफा ब्लिंक करती है दिन में, सुभान अल्लाह अल्लाह हू अकबर। हमारे गुर्दे जो ये डायलिसिस करते हैं 40 दफा करते हैं, 40 टाइम्स करते हैं दिन में, समझ ले साफ कर रहे हैं। डायलिसिस वैसे कराने जाओ तो कितना महंगा होता है, वो डायलिसिस वाला जो काम है ये हमारे गुर्दे कर रहे हैं, क्या कहोगे आप इसको। 7,500 लीटर खून दिल रोजाना पंप करता है, तो आप इसके लिए फैक्ट्रियां लगा लो, कहां से आपको ऐसी फैक्ट्री मिलेगी जो आपका खून ही साफ करती है, या हम खुद करने लगे तो सारा दिन हम अपना ही खून साफ करते रहेंगे बस, फिर और काम तो हो गए हमारे, अपने आप से नहीं पहचानते अल्लाह को, देखते नहीं हो। हम तो सो जाते हैं, जब हम सोए हुए हैं, अच्छा इतना दिन में हमने काम किया, थक गए, जिस्म में दर्द हो रहा है, ऐसे अब हम सो गए, सो के जब हम उठते हैं हम फ्रेश हैं बिल्कुल, ठीक ठाक हो गए, दर्दें सब खत्म हो गई, थकावट दूर हो गई, खाना भी हजम हो गया। आप तो सोए हुए थे, ये सारा काम कौन कर रहा, हमारा जिस्म कर रहा था, जिस्म को किसने कहा, आपने बताया था उसको, हमें तो ये भी नहीं पता काम करना कैसे, इसने हमें नहीं पता मेदा कैसे काम करता है, हमें नहीं पता दिल कैसे काम करता है, आप सबने पढ़ी भी है ये सारी मेडिकल साइंस, पढ़ी भी जिसने हो, जानता भी हो तो कर सकता है ये क्या खुद जाके। सांस का ही एक निजाम खुद नहीं चला सकते, और ये इतने 37.2 ट्रिलियन सेल्स को ऑक्सीजन जा रही है, अगर नहीं जाएगी मर जाएंगे, कैसे पहुंच रही है हमें क्या पता, और पहुंच रही है। इसे अल्लाह को नहीं पहचानते तुम? अल्लाह ताला कहता है तुम्हारे नफ्सों में दिखाऊंगा निशानियां ऐसी कि तुम पुकार उठोगे कि वो हक है, वाकई अल्लाह है, इसे तुम्हें याद नहीं आता। सब कुछ फायदा उठाते हैं, सब देखते हैं, लेकिन कुछ नहीं होश। वह बसफीहा मिन कुल्ली दाबत, फिर देखो कि इस जमीन पे कितने जानवर उसने फैला दिए, यहाँ पे जितने जानवर आप देखो, या तो वो इंसानों के फायदा दे रहे हैं उसके खाने पीने के लिए है, या उसकी सवारियों के लिए काम आ रहे हैं, या उसके सामान ले जाने के लिए काम आ रहे हैं, या किसी ना किसी तरह इंसान को सर्व कर रहे हैं, और कईयों का हमें नहीं समझ आता तो उनका भी कोई पर्पस है। अल्लाह ने सब जानवर फैला दिए, वो कहते हैं अब इंसानों ने डिस्कवर कर लिए 20,000 यानी 20 लाख स्पीशीज, ये तो सिर्फ स्पीशीज है, यानी स्पीशीज मतलब ये कि अनवा अनवा जानदारों की जानवरों की इतनी अनवा उन्होंने डिस्कवर कर ली है। तो सोचें मतलब है ये तोते, ये एक नौ एक स्पीशी हो गया, अब उसमें कितनी तरह के तोते हैं, चिड़ियां कितनी तरह की हैं, चींटियां वो कितनी तरह की हैं, उनका एक जहान ही है अपना। इस तरह की एक मछली डिस्कवर हो गई, आपको आए दिन तो वो कहते हैं हमने ये डिस्कवरी कर ली, तो 20 लाख तो अभी स्पीशीज ही डिस्कवर इनसे हुए हैं, और उनकी आगे नस्लें बताएं कितनी होंगी, एक एक की अल्लाह निगरानी कर रहा। सबसे बड़ी इस वक्त दुनिया के अंदर जो मखलूक है वो ब्लू व्हेल है, वो अपनी पूरी जिंदगी में इतना ट्रेवल करती है, इतना तैरती है, इतना सफर करती है, 10 दफा चांद पे जाके वापिस आ जाए, इतना सफर करती है अपनी पूरी जिंदगी। सुभान अल्लाह, एवरी डे उसका वजन बढ़ता है, कितना बढ़ता है, हम बहुत खा लें तो हमारा कितना बढ़ जाएगा, 1-2 पाउंड 3 पाउंड बढ़ जाएगा एक दिन में, बहुत भी किया तो उसका कितना बढ़ता है, 200 पाउंड बढ़ता है हर दिन उसका वजन। अल्लाह की कितनी बड़ी बड़ी मखलूक इस जमीन के ऊपर, तो अल्लाह ताला ने कहा इसके ऊपर हमने फैला दिए, हर तरह के जानवर, रींगने वाले कीड़े भी हैं, उड़ने वाले परिंदे भी हैं, तैरने वाली मछलियां भी हैं, जंगलों में कितने हैं। वो तशरीफ रिया, और देखो हवाओं का गर्दिश करना, ये हवाएं गर्दिश करती हैं, कभी देखे वो कहते हैं फलानी तरफ से हवा आ गई, वो पोलर वर्टिक्स आ गई, वो इतनी पोल से आ रही हवाएं, वो इतनी सर्द है कि उसकी वजह से सर्दी आ गई, कभी गर्म हवाएं चल पड़ती हैं, कभी हवाएं बादल लेकर आ जाती हैं, कभी कहाँ की हवाएं कभी कहाँ की। अरे हवाओं का गर्दिश करना, तो कोई हवाओं को चलाता होगा ना, और हवा ने देखो हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है, घेरा हुआ है ना, इसे नहीं पता चलता कि इसका मतलब अल्लाह ने, अल्लाह का अल्लाह की मखलूक है ना, अल्लाह ने हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है, हम उसके कंट्रोल में है, क्योंकि उसकी एक मखलूक है जो उसने हमारे इर्द गिर्द बिल्कुल हमारे गिर्द उसने यानी कायम की भी है, हम उसकी ताकत में है, उसकी कुदरत में है। आप देख लें हवा जब चलती है सिर्फ कहने को हवा ही होती है, हल्की फुल्की चले तो मजा आता है, अगर कहीं लू की फॉर्म में चलने लगे तो क्या हाल हो जाता है, वही हवा के थपेड़े ऐसे लगते हैं कि जैसे आग है, और वो ही हवा तेज शदीद चलने शुरू हो जाए, पिछले दिनों चल रही थी जब, तो यकीन जाने कि सिर्फ गाड़ी से किसी स्टोर तक जाना मुश्किल हो रहा था, ऐसा लग रहा था हवा उड़ा के ले जाएगी। तो हवा कभी इतनी अनकंफर्टेबल हो सकती है, कहने को सिर्फ हवा ही तो है, देख भी नहीं सकते इसको, लेकिन ये भी अल्लाह की एक मखलूक है। अल्लाह के जो लश्कर है ना, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला कहता है अल्लाह के लश्करों को, अल्लाह के जुनूद को सिर्फ वो ही जानता है, ये अल्लाह के लश्कर है, हमें पता ही नहीं, हम तो घिरे हुए हैं अल्लाह ताला की निशानियों से, आंख वो चाहिए जो इन निशानियों से कोई सबक ले, वरना ऐसा नहीं है कि हाँ कहाँ है खुदा हमें तो पता ही नहीं चलता। वी नीड अ साइन, जब कोई इस्लाम की तरफ नया नया आता है तो सबसे ज्यादा लोगों के मुंह से क्या सुना है कि हम इस्लाम लेकर आए लेकिन जो भी कोई खुदा है हमें कोई साइन दिखाए, ओ भाई इन आंखों को खोलो, साइन तो हर तरफ है, अल्लाह ताला तो कुरान में फरमाता तुम तो साइन से घिरे पड़े हो, और कौन सा तुम्हें और साइन चाहिए, तुम कायनात में ही गौर कर लो तो साइन से भरी पड़ी है, क्या ये निशानियां नहीं है अल्लाह की? हवा किसके हुक्म से चल रही है? ये सिर्फ एक फोरकास्ट हमें कर देते हैं, वो हवा आ रही है जा रही, क्या इनमें से कोई हवा को कंट्रोल भी कर सकता है? क्या आज हमारे मुल्क में ये वाली हवाएं ना आए? ये वाली हमें पसंद नहीं, बहुत ज्यादा इसे सर्दी हो जाएगी, तो उनको रोक के दिखा लेना। अब इतना निजाम, अब इतनी तरक्कियां जो कर ली है, तो अब हवाओं को रोक लिया करें। ऐसी तूफानी हवाएं भी चलती हैं, क्या वो फिर समुद्रों में हरिकेन्स आ जाते हैं? कैसे आप देखें वो तबाही लेकर आते हैं फिर, किस लिए, किस तरह हवाओं के ही चक्कर है ना। और जब हवाओं के ऐसे झक्कड़ चलते हैं, वो समंदर भी आ जाते हैं जमीन के ऊपर। तो हवा को मामूली बात नहीं। والسحاب المسخر بين السماء والارض, और बादलों को मुसखर किया हुआ, कंट्रोल में है, दरमियान में है आसमान के और जमीन के। ये किसने रखे में? बादल अगर हल्का हो तो फिर ऊपर ही चढ़ जाए, नजर ही ना आए, पता नहीं कहां चला गया। अगर भारी है पानी से तो नीचे क्यों नहीं गिर जाता? बिल्कुल बैलेंस है, बीच बीच में चल रहा है। आप स्नो होती देखते हैं, अब स्नो हो रही है, हाय बादलों ने इतना कुछ उठाया हुआ था कि हमारे यहाँ पे 2-3 फुट स्नो हो जाती है कभी, तो क्या वो बादल है, क्या इन्होंने इतना कुछ उठाया हुआ? वो स्नो जब जमीन पर पड़ती है तो उसको उठाना मुश्किल हो जाता है, उसको किसकी सफाई मुश्किल हो जाती है। और कहाँ इतने बड़े खित्ते तक वो स्नो पड़ी है, बादलों से आई ना। बारिश भी जब होती है तो कितनी कितनी इंचेस हो जाती है बारिश, आप हैरान होते हैं कि ये बादल इतना पानी उठाए हुए थे, अभी भी गिर नहीं पड़े, कितना लोड उठाया हुआ हमने। सुभान अल्लाह, ये देखिए ये सारे फिर किसी के हुक्म पे तो चल रहे हैं ना। कहाँ जाके बारिश बरसानी है, कहाँ पे नहीं बरसानी, कहाँ पहुंचना है, कहाँ नहीं पहुंचना, किस टाइम पे पहुंचना है, कितने कतरों ने गिरना है, किसी किसी ने तो इसकी प्लानिंग की होगी या नहीं, तो पता चलता है ना वो बेस्ट प्लानर है। कोई प्लानर है इसका, कोई कुदरत रखता है, पावरफुल है कोई, उसकी प्लानिंग भी बहुत जबरदस्त है, इल्म भी है उसके पास, हिकमतें भी हैं उसके पास, कुदरतें भी उसके पास, ताकतें भी उसके पास है, वो देख भी रहा है कि अच्छा अगर एहतसाब ना हो किसी चीज का तो क्या चीज ठीक चल सकती है, यानी कुछ पूछने वाला ही ना हो, कोई देखने वाला ही ना। इसका मतलब हर चीज को वो उसने एक हिसाब से रखा और वो उसके मुताबिक काम कर रही है। अगर उसको ये डर ना हो कि मेरे पास कोई भी देखने वाला नहीं है, मैं जो मर्जी करूं, तो फिर तो कोई भी कहना ना सुने। सब चीजों को पहचान है कि एक रब है, उसका ये हुक्म है और वो उसके हुक्म के मुताबिक इसका मतलब काम कर रहे हैं, उनको शऊर है इस चीज का। समंदर क्यों नहीं चढ़ आते जमीन के ऊपर? कभी देखा है समंदर कितने बिखरे हुए होते हैं, क्यों नहीं जहाजों को डुबोते फिरते हर जगह जहां पे भी? समंदर कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी एक, यानी एक मैसिव चीज है। पानी, आपने अगर नियाग्रा फॉल देखा हो, पानी के अंदर कितनी हद तक ताकत आ जाती है वो आप देख सकते हैं जब गिरता है कहीं से। तो ये पानी है समंदरों में, लेकिन इनको कंट्रोल करने वाला कौन है, इनको ये स्मूथली चलाने वाला कौन है? या बीच पे बैठे हैं तो आपको मजा आ रहा है, वही वाइल्ड हो जाए तो क्या करें? इसका मतलब वो किसी के कहने में है, हर कोई उस किसी का कहना मान रहा है, और वो एक ही है जिसका सब कहना मान रहा है, क्योंकि सब हार्मनी से काम कर रहे हैं, यानी सब कोऑर्डिनेशन के साथ चल रहे हैं, एक दूसरे के साथ ताबुन करते हैं। समंदर ये नहीं कहता मुझसे पानी ना उठा के लेके जाओ, मैंने नहीं अपना पानी देना, ये नहीं कहता मैंने जहाज नहीं चलने देने, सूरज ये नहीं कहता मैंने नहीं यहां पे चमकना, लेकिन ना बारिश ये नहीं कहती मैंने बरसना नहीं है, और बादल ये नहीं कहते हम अपनी मर्जी करेंगे, हमने नहीं पानी बरसाना, हम क्यों इतना पानी लेके बोझ लेके चले। सब किसी के फरमा बरदार है, कायनात फरमा बरदार है, और तुम्हें क्या सबक देती है फरमा बरदारी का? और ये बताती है कि देखो मिलजुल के सब काम कर रहे हैं, किस लिए? एक अल्लाह के कहने पे। हालांकि समंदर अलग चीज है, हवाएं अलग चीज है, बादल अलग चीज है, ये सब एक का हुक्म मान रहे हैं।
कोई एक ही हस्ती होगी ना, अगर एक से ज्यादा होती तो कुछ कोई कुछ क्या था, कोई कुछ क्या था। हर कंपनी में भी देखें ऊपर जाके बॉस एक ही होता है, ये नहीं होता कि सारे ही बॉस बन के फिर रहे हैं। उसके नीचे हो सकते हैं उसके कारिंदे, जो कि कितने भी हों, 4 हों, 6 हों, 10 हों, उनके आगे आगे और लोग हो सकते हैं, मगर ऊपर जाके तो एक ही होता है। जैसे कंपनी इसके अंदर कितने सारे डिपार्टमेंट होते हैं, कोई आईटी का है, कोई अकाउंट्स का है, कोई एचआर है, कोई कोई, सारे कोऑर्डिनेशन से चल रहे होते हैं ना, तब उस कंपनी का निजाम चलता है ना। इसी तरह अल्लाह की कायनात में कोई बारिश का निजाम है, कोई हवाओं का निजाम है, कोई जमीन का निजाम है चलने का, कोई आसमान में कोई निजाम है, कोई बारिश का निजाम है, ये सारे निजाम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ चल रहे हैं। वो नाराजगियां कर करके नहीं बैठे हुए, को उधर मुंह करके बैठा है, उधर करके बैठा है, उसने इसने नहीं मैंने बात करनी, मैंने नहीं आज उसकी माननी, मैंने नहीं इसके साथ कोई अपना ताल्लुक रखना। अगर ऐसे होता तो हर एक अपना अपना कुछ कर रहा होता, नहीं, ऑल आर ओबीडियंट और सब मिलके चल रहे हैं उस एक रब की ओबीडियंस में। ये बातें तो जाननी, किसके अंदर तो अभी कोई दीन की बात ही नहीं आई है, तो सीधी सीधी सिर्फ निशानियों से इन्फर की गई हैं बातें, अखज की गई हैं यहीं से। हम बताएं इसके अंदर तो अभी तो कोई बात भी नहीं पड़ी, और क्या इन चीजों से अगर इंसान अकल इस्तेमाल करे क्या नहीं समझ आती। अल्लाह ताला ने इसीलिए फरमाया आयातिल लिकौमी याकिलून, आयात है इसमें निशानियां उस कौम के लिए जो अकल रखती है। आप कहते हैं ये फलां ये इतना PhD है, वो इतना बड़ा डॉक्टर है, वो ये है वो है, और उसके बाद उसको अल्लाह की पहचान ही नहीं, वो एक खुदा का इनकार करने वाला है, तो वो कोई अकल वाला नहीं है। उसके पास इल्म हो सकता है, अकल नहीं है, क्योंकि अकल वाला इन निशानियों से अल्लाह को पहचान जाता है। कौमी या किलून, इसका मतलब हर एक को समझ नहीं आएगी, उस कौम को समझ आएगी जो अकल रखती है, उन लोगों को ये बात समझ आएगी। वो अनपढ़ अकलमंद है जिसने इन चीजों को देख के अल्लाह को पहचान लिया, और वो PhD आदमी बेवकूफ है, अकल वाला नहीं है, जिसने अल्लाह को नहीं पहचाना चाहे उसने कितना इल्म क्यों ना ले लिया। समझ आए? तो अकल डजंट मीन कि आपके पास डिग्रियां कितनी, अकल मीन्स कि आपको अल्लाह की पहचान कितनी है। ठीक, अल्लाह ताला आज जो पढ़ा है इसको कबूल फरमाए, अल्लाह ताला इन पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए इन आयात के ऊपर। अल्लाह ताला हमें आजमाइशों में सबर करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला हमें बड़ी आजमाइशों से महफूज रखे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। तिलावत सुने।
إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون